दूसरा राजा अध्याय 5 पद 1 से लेकर 5 तक। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयित किया था, और ये शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यत वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तब वो 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। पत्र में उसने लिखा, मैं चाहता हूं कि तू मेरा सेनापति को उसके कोढ़ से चंगा कर दे। जब इसराइल के राजा ने नामान को आते देखा तो पहचान गया कि वो कौन है, आराम सीरिया की सेना का सेनापति। वो उसे पत्र देता है जिसमें लिखा है, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम के अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पर राजा चिंतित हुआ और कहने लगा, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। राजा ने अपने कपड़े फाड़े और परेशान हो गया। एलिशा को जब ये संदेश प्राप्त हुआ कि आराम के राजा का पत्र पाकर राजा उसकी मांग से परेशान है, तब उसने कहा, वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इसराइल में भविष्यत वक्ता है। अतः नामान एलिशा के घर आया, परंतु एलिशा उसे भेंट करने के लिए बाहर नहीं निकला। उसने अपने सेवक गेहजी के द्वारा निर्देश दिया, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। ये सुन नामान क्रोधित हुआ और कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा, परंतु उसने तो अपने सेवक को संदेश लेकर भेज दिया कि यर्दन में डुबकी लगा। हमारे पास दमिश्क में इससे अच्छी नदियां हैं। और वो क्रोध में ही घर लौटने लगा। वो आग बबूला हो गया था। जब वे लौट रहे थे तब मार्ग में उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यत वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या उसे ना करता? फिर जब वो कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। ये भी एक छोटी सी बात है, इससे तेरा मन खेदित क्यों होता है? अतः वे यर्दन नदी के किनारे आए और नामान ने उसमें डुबकियां लगाई। जब वो 7वीं बार डुबकी लगाकर बाहर निकला तब उसका शरीर एक शिशु की नाई कोमल हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। वो उत्साह से भर गया था। अब वो लौटकर नबी के घर आया, क्योंकि आराम के राजा ने उसके हाथ उनके उपहार भेजे थे। एलिशा के घर पहुंचकर उसने कहा, अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। एलिशा ने उत्तर दिया, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट नहीं लूंगा। घर जाने से पूर्व उसने ये अंगीकार किया कि इसराइल को छोड़ समस्त पृथ्वी में और कहीं परमेश्वर नहीं है, ये मैं जान गया हूं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अध्याय 5:16। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। मैंने पहले भी कहा है कि जिस मनुष्य के पास ऐसा वरदान हो, उसे बड़ी परेशानी होती है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास चंगाई की सेवा है या अन्य वरदान है, वे स्वयं को धनी बनाने के दोषी हो गए हैं। लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और परमेश्वर के सेवकों को उपहारों से भर देना चाहते हैं, परंतु यहां एलिशा है जो ऐसे कीमती उपहार स्वीकार नहीं करता है, जबकि ये उसका अधिकार था। नामान को उसने चंगाई नहीं दी, चंगा करने वाला तो परमेश्वर था, अतः एलिशा क्यों भेंट स्वीकार करता? नामान ने बहुत निवेदन किया, परंतु एलिशा ना माना। नामान की चंगाई में हम कुछ बड़ी ही ध्यान देने योग्य बातें देखते हैं, और उनमें से एक बात जो हम सबके साथ है वो ये है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है। हम प्रभु के लिए कोई अनोखा काम करना चाहते हैं, जैसे मैं जाकर हजारों दैत्यों को नाश करना चाहता हूं आदि। परमेश्वर जो मुझे देता है, मुझे उसे सामान्यतः स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बड़े सामान्य तरीके से बड़े निर्मल वरदान देता है कि मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। मैं किसी न किसी तरह से परमेश्वर की आशीषों के योग्य होना चाहता हूं, या परमेश्वर के उन आशीषों को पाना चाहता हूं, परंतु अपनी क्षमता में ऐसा नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर की भलाई को केवल अनुग्रह के द्वारा ही पा सकता हूं। अब देखो, उद्धार भी कैसा सरल और आसान वरदान है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओह, देखो ये कैसा आसान है, परंतु हम इस सादगी से विद्रोह करते हैं। प्रभु, अब मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं बाहर जाकर तेरी गवाही दूंगा, मैं अब प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा और वो करूंगा, मैं परमेश्वर को वो सब बताता हूं जो मैं उसके लिए करूंगा, उसकी उस भलाई के बदले जो उसने मेरे लिए की। अनुग्रह को सौम्यता में स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, नहीं क्या? बस केवल इस सत्य को स्वीकार करो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसके वरदानों को सौम्यता पूर्वक स्वीकार करो। सेवक गेहजी ने देखा कि एलिशा ने सब उपहार लौटा दिए हैं, तो वो सोच में पड़ गया, ओह, मैं इस मुफ्त के माल से क्या करूं? मैं इसे जैतून का खेत या एक दाग की बारी खरीद सकता हूं। मैं अपने लिए किराए पर सेवक ले सकता हूं, और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा यदि इसका कुछ भाग मुझे मिल जाए। और वो सोच विचार करने लगा कि नामान द्वारा लाई गई इस भेंट में से मैं कैसे कुछ प्राप्त करूं, और वो नामान के पीछे गया। उसे आते देख उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नबी का कोई सेवक आ रहा है। तब उन्होंने ये सोचकर प्रतीक्षा की कि हो सकता है कि कुछ गलत हो गया हो, और जब गेहजी निकट आया तब उसने पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? उसने उत्तर दिया, हाँ सब ठीक है, बस मेरे स्वामी के घर कुछ जवान नबी आए हैं और उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, दो किकार लेने को प्रसन्न हो, और वो ये सब देकर प्रसन्न हुआ और अपने सेवकों पर लाद दिया कि ले जाए। परंतु जब वे शहर के दरवाजे पर पहुंचे, गेजी ने कहा, बस ठीक है, यहां से मैं ले जाऊंगा। और उसने ले जाकर अपने घर में रख दिया और खुश होता हुआ आया। अध्याय 5 पद 25 और 26। और वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे कहा, हे गेजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र, वो जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? देखिए, इस स्थान पर एलिशा ने गेजी का मन पढ़ना आरंभ किया, या यूं कहिए कि उसने ये समझना आरंभ किया कि उसके मन में क्या है। उसने ये सब सोचा था कि इस धन में मैं जैतून का खेत और दाख की बारी खरीदूंगा, सेवक रखूंगा, बैल खरीदूंगा, भेड़े खरीदूंगा और अपने आप को बड़ा आदमी बनाऊंगा। भविष्यद्वक्ता ने उसके मन के विचारों को पढ़कर सुना दिया। अध्याय 5 पद 27। इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया।